सेकेंड नंबर के भाई क्या ना
नहीं
उससे छोटे
हरी
हरी वो तो यहीं पर आते हैं ना कभी कभी वहाँ पर भी उनकी बेटी भी आती है ना
अभी न्यूजीलैंड गई है
न्यूजीलैंड गई
उसके भाई की शादी है
अच्छा और वो तुम्हारे घर से है अभी कैसी है तू ठीक है और प्रसन्न है अभी कहाँ अच्छा तुमको रहना अच्छा लगता है इनके पास में ना घर में तुम्हारे पिताजी के पास कभी कभी जाना क्या कुछ हमको बोलना है कुछ बोलना है
राधा रानी की सहेली है
ये 87
में लगभग 14 साल पहले दोनों साथ में मायापुर गई थी
अच्छा
ये और राधा रानी साथ में तो राधा रानी ने रिंग करके इसको कहा कि हमारे गुरु महाराज जा रहे हैं और तुम जाके दर्शन करना गुरुदेव का
तो राधा रानी से तो ये बहुत उम्र की बड़ी है
किंतु
सहेली है
थोड़ी है
तो ये क्या करती है
और
ये कौन है
ये भी अभी वन महाराज जब आए थे तो हमने बुलाया था तो बहुत अच्छा उनको बहुत आनंद आया तो हरी वन महाराज के पास से माला ली थी
बहुत अच्छा
तो आपको मिलने की इच्छा बहुत
तब से आपको मिलने की इच्छा है
परीक्षित महाराज सातवें दिन मरने वाले थे एक छोटे से ऋषि के बच्चे ने उनको अभिश्राप दे दिया कौश दे दिया कि कोई तक्षक सर्प आएगा और तुमको सातवें दिन डस देगा तो मर जाएगा जो कुछ तुमको करना है करो तो परीक्षित महाराज जी सारे विश्व के राजा थे राज्यपाल छोड़ दिया और गंगा के किनारे खाना पीना सब छोड़कर बैठ गए भूमंडल का राज्य एक सेकंड में छोड़ दिया और गंगा के किनारे बिना खाए पिए बैठ गए और सोचने मुझे क्या करना चाहिए और भगवान की कृपा से उसी समय में भगवान के बड़े बड़े भक्त नारद व्यास गौतम इत्यादि बड़े बड़े महर्षि लोग जो कि स्वयं रियलाइज थे भगवान की अनुभूति जिनको थी सब लोग वहां पर पधारे उनको ऐसे ही मालूम हो गया आकर के बैठे इतने में एक छोटा सा नंगा धड़ंगा सुखदेव जी परमहंस वहां पर पधारे उनको बैठा करके आसन दे करके अर्घ दे करके पैर टैर धोकर जब आराम से बैठ गए तो हाथ जोड़ करके परीक्षित जी ने उनसे दो प्रश्न किया पहला प्रश्न किया जो आदमी अभी तुरंत मरने के लिए बैठा हूं, तुरंत अभी मृत्यु होने वाली है, रक्षा नहीं है, तो उस व्यक्ति को उस समय क्या करना चाहिए? भाई लाइट जला करके किस लिए रखे? मैं तुम्हारा वो वीडियो देखूं, तो जो अभी मरने वाला व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? और दूसरे जो व्यक्ति हैं, ये पहला प्रश्न हुआ, तुरंत मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? और दूसरा प्रश्न ये कि जो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं बरसों, मरेगा जरूर, इस जन्म में ऐसा कोई नहीं है जो मरा नहीं। जगत में आते हैं, जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, जुआ होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये बूढ़ी स्थिति भी आने वाली है और एक दिन मरना है। ऐसे मरने वाले को क्या कर्तव्य है? ये दो प्रश्न हुआ। सुखदेव जी ने इसका उत्तर दिया, जो भी मरना वाले है उसको दान पुण्य या यज्ञ वो कर नहीं सकता, इसलिए भगवान का जितना शक्ति है नाम में है उनके, बस नाम करे और कुछ नहीं। भगवान का चिंतन करे, कृष्ण का, और उनका हरे कृष्ण 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 हरे, इतना पूरा नहीं आता है, कृष्ण कृष्ण राम राम राधे राधे गोविंद, कोई भी भगवान का नाम स्मरण। यदि उसको होश नहीं है, कोमा में है, यदि वो बोल नहीं सकता और उसको फीलिंग नहीं है मरने जाए, तो उसको क्या करो? कृष्ण नाम सुनाओ, तुलसी जी का पत्ता गंगा जी गंगा जल में देकर के उसके मुख में दे दो और भगवान का नाम सुनो। ये तो हुआ जो आज अभी इतना मरने वाला। और दूसरा जो आज न कल न बरसों न परसों जरूर मरेगा या मरेगी, उनको इस जन्म में सुख और शांति के लिए और परलोक के लिए, मृत्यु के बाद के लिए, उनको क्या करना चाहिए? उनको सद्गुरु के पास जाकर, जो रियलाइज्ड पर्सन है, उत्तम महाभागवत है और सब समय भगवान का नाम चिंतन और कीर्तन करते हैं, दूसरों को भी भगवान की तरफ मिलाते हैं, ऐसे गुरु के पास में जाओ दीक्षा मंत्र दे करके और उनका नाम करो और साथ साथ में एकादशी का व्रत है वो करे और दूसरे जो व्रत है वो सब करे, जन्माष्टमी भागवत की कथा सुने और आचरण करे वैसा ही। ऐसा करते 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 उसके हृदय में कुछ श्रद्धा आएगी, निष्ठा रुचि आएगी और देह में जो मैं हूँ यह अभिमान दूर हो जाएगा। सब लोग समझो ये शरीर मैं नहीं, इसके अंदर में आत्मा है और उसके अंदर में परमात्मा है और वो परमात्मा कृष्ण है, राधा जी हैं, राधा और कृष्ण। इस तरह से अपना जब मृत्यु आए तो भगवान का स्मरण करते करते शरीर छोड़ करके गोलोक वृंदावन में जाकर के राधा कृष्ण की सेवा पाए। इसलिए उपदेश दिया लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहुसंभवान्ते मानुष्यम् अर्थदम् अनित्यम् अपि हदीर तूर्णम जतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत् निशेषाय विषय खलु सर्वतः। क्या विषय खलु सर्वस्य, विषय सब जगह मिलेगा। विषय मैंने क्या, इस जगत में रुपया पैसा धन संपत्ति स्त्री संग अपने बेटों बेटियों का पालन पोषण, यह कहलाता है विषय। ये विष से विषय बना, विष है ना, पॉइजन। ये तो एक सांप होकर के आएगा, कुकर सुकर होकर के आएगा, तभी ये मिल जाएंगे। विवाह शादी और भोग बाल बच्चे होना, ये पशुओं में मनुष्य से अधिक है। उनको एक साथ में दस दस बारह बारह सोलह बच्चे पैदा होते हैं कुकर सुकर को। उनके स्तन भी नीचे से ऊपर तक आठ आठ दस दस सोलह होते हैं, और कछुए और मछली के अंडे होते हैं, उसे एक ही साथ में लाखों बच्चे पैदा होते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। ये तो मर करके हम जहां जाएंगे वो सब जगह मिल जाएगा। एक कुकर को शुकर को वो उसके साथ में कोई बंधन नहीं है। जितनी सुवरिया है, सुवरिया समझते हैं ना, उनके लिए ऐसे विवाह की जरूरत नहीं है। कितने बच्चे पैदा होते हैं, जहां तहां सो जाते हैं गंदे नाले में, खाने पीने की कोई जरूरत नहीं है। जहां मिल गया ताजा टट्टी पैखाना उसको भी खा करके अपने जीवन निर्वाह कर लेते हैं। लड़के और लड़की की शादी के लिए उनको रुपया पैसा जुगाड़ करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप हो जाता है। तो तुम मनुष्य होकर के किस लिए श्रेष्ठ, इसी के लिए बतला रहे हैं। लब्ध्वा सुदृढ़ इदम बहु संभवान्ते, प्रभु बड़े दयालु हैं, अहेतुकी दयालु हैं, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए मनुष्य का जन्म दिया। किस लिए दिया, मनुष्य की बुद्धि अधिक है इसलिए नहीं। कुत्ते सूंघ करके जान लेंगे ये विष है या क्या है। आंधी तूफान आने को होगा तो हाथी पहले से जान लेता है, और सब में बहुत गुण है जो मनुष्य में नहीं है, किंतु यह साधु संग कर सकता है। कोई पशु को बुला करके बैठा करके हम ये बात करेंगे नहीं सुनेंगे, किंतु मनुष्य सुन सकता है। उसका स्वभाव परिवर्तन हो सकता है साधु संग में, और भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, अपनी आत्मा का रियलाइजेशन कर सकता है। दूसरे किसी जन्म में ये नहीं, इसलिए मनुष्य जन्म दिया। मनुष्य जन्म पा करके जो लोग विषयों में ही स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति प्रतिष्ठा में धन कमाने में सारा जीवन लगा देते हैं, वो मानो अपने आत्मा की हत्या करने वाले हैं, वो आत्मघाती कहलाते हैं। ये मनुष्य शरीर पाकर, सत्संग पाकर के, सदगुरु पाकर के, सब कुछ होते हुए भी जो भगवान का भजन नहीं किया वो कैसा है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, हरि भजन करने के लिए आए और ये विषयों में 99 के फेर में पड़े। भगवान का भजन छूट गया, संसार का जो कुछ मिला वो भी मृत्यु के समय में छोड़ गया। स्त्री पुरुष सभी छोड़ देना पड़ेगा, धन संपत्ति एक पैसा काम में नहीं आएगा, और शरीर भी रह जाएगा। अपने पूरे कर्मों का, अच्छे कर्मों का फल लेकर के जाएगा, फिर जन्म होगा। एंडलेस चेन ऑफ बर्थ एंड डेथ लगा रहेगा, समझ रही है तुम, उसमें लगा रहेगा, ये कभी नहीं होगा। इसलिए मनुष्य जन्म भगवान ने दिया, किंतु है अनित्य। अनित्य माने कब खत्म हो जाएगा, गर्भ में ही हो जाएगा, एक दो वर्ष पांच वर्ष के बाद में मर जाएगा, कि 20-25-40 वर्ष के बाद में मरेगा, कि 50 वर्ष के, कि 100 वर्ष, 150 वर्ष, इससे अधिक कलयुग में आयु नहीं, मरेगा जरूर। इसलिए अनित्य होने पर भी अर्थदम भगवान की भक्ति देने वाला, अर्थ दो प्रकार, लौकिक अर्थ जैसे आप लोग कमा रहे हो, कमा माने इकट्ठे कर रहे हो संपत्ति, ये धन है, रुपया पैसा, बाग बगीचा, घर महल, बेटे बेटी, ये सब कहलाते हैं जगत के धन, अनित्य और दुख देने वाले। और परमार्थ कहते हैं परमार्थ, जो कि दुखदायी नहीं है, वह है भगवान का भजन करना, भगवान का रियलाइज इसी जन्म में कर लेना, सद्गुरु को प्राप्त करना। तो इसे इसको जल्दी से जल्दी, मनुष्य जन्म कब खत्म हो जाएगा अगर ठीक नहीं है, जल्दी से जल्दी, तूर्णम जते न पतेत अनुत्या, जब तक शरीर गिर नहीं जाता, शरीर की मृत्यु नहीं हो जाती, उसके पहले ही जीवन सार्थक कर, संसार के पछड़े में मत पड़ो। यदि संसार में विवाह शादी किया, बाल बच्चे हैं, तो उनको भगवान का सेवक समझकर बिना आसक्ति के उनका पालन पोषण करो, आसक्त मत हो। और इस तरह से इसी जन्म में तूर्णम जतेत न पतेत अनुमित जावत निशेषाय विषय, और भगवान की भक्ति के लिए चेष्टा, भगवान को जानने के लिए चेष्टा। आपकी शादी हुई है, कहाँ है? इनके साथ में तुम्हारा कितने दिन पहले संबंध हुआ? 12 वर्ष पहले। इसके पहले संबंध था? जानते थे आप उसको? अच्छा। जब मृत्यु हो जाएगी, कि कोई ना कोई आगे जाएगा ना पीछे, चाहे 100 वर्ष 200 वर्ष, समझ रही है? मान ले कि एक आदमी चला गया, तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करेगा, तुम्हारे लिए वेट करेगा? कहाँ जाएगा? जाएगा कहाँ? सही तो यही रह जाएगा, जाएगा कहाँ? उसकी आत्मा चली कहाँ? अधिक पाप करेगा तो नरक में जाएगा, और अधिक पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, और स्वर्ग से घूम फिर करके भोग करके चला है। इसलिए निशेष है भगवान का भजन करना, यही परमार्थ इस जगत में। इसलिए भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, इसी जन्म में संसार में अनाशक्त हो करके भगवान का भजन कर। नारद जी बचपन से ही भगवान का भजन किया, प्रहलाद महाराज जी 5 वर्ष की आयु के पहले से ही भजन किया, चैतन्य महाप्रभु जी घर में सब कुछ, स्त्री पुत्र परिवार सबको, मैया को छोड़ करके चले गए। ये एक तरह का भजन है। और दूसरा पांडव लोग हैं, पांडव जी का नाम जानते हैं ना, अम्बरीश महाराज थे, प्रहलाद महाराज थे, ये लोग गृहस्थ भक्त हैं। जैसे पांचों पांडव थे, कोई किसी में आसक्त नहीं था, धन जन में वो तो जो कुछ था कृष्ण के लिए था, द्रौपदी कृष्ण की प्यारी सखी थी, इसलिए पांचों पांडव उनको मानते थे। और ये लोग भक्त थे, द्रौपदी जी उनकी सेवा करती थी, स्त्री कहनाते नहीं। आपकी शादी इनके साथ या इनके साथ में होगी कि नहीं? एक पुरुष की शादी एक पुरुष के साथ में होगी कि नहीं?
जी
नहीं ना। अच्छा, यद्यपि वो स्त्री का शरीर है, का पुरुष का शरीर है, किंतु आत्मा से क्या है? आत्मा जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है, सब भगवान की शक्ति से है, इसलिए वो भी स्त्रीलिंग स्त्री है आत्मा आपकी। तो स्त्री से स्त्री की शादी कैसे होगी? इसलिए जीवात्मा की शादी यदि होगी तो परम पुरुष जो कृष्ण है उनसे होगी। गुरु यही चीज कराता है, यही चीज कराता है। जीव में जीव की शादी नहीं कराता, यह संभव नहीं है ना? ये तो लौकिक व्यवहार में भगवान ने हमको कष्ट भोगाने के लिए और गर्म करके लोहे को हथौड़ी से पीट करके सुधारने के लिए ये संसार बना दिया। अभी खूब आराम से चल रहा है संसार, अभी मालूम नहीं होता क्योंकि जवानी है ना। जरा बुढ़ापा आने दो, सठी आने दो, जो 60 वर्ष की हो जाओ, इसके बाद में 80 में आओ, 80 के बाद में देखो लकड़ियां लेकर के डोकरियों जैसी ऐसे ऐसे करेंगे, और इसके बाद में कतो
कीर्तन करे 30 मिनट है।
30 मिनट वह 30 मिनट हमारा आशा ही है नहीं तो है। तो इस चीज को समझो और इस तरह से समझ करके सद्गुरु की बात मानकर उनसे हरिनाम और दीक्षा लेकर जल्दी से भजन आरंभ कर। संसार में रहो कोई बात नहीं, आसक्ति मत रखो, अपना कर्तव्य ज्ञान से सब करो, किसी में आसक्त होने आसक्ति कृष्ण के चरणों में, राधा जी के चरणों में आसक्त, और घर का काम सब करो, इस तरह से रह करके भजन करो। आप सुना दीजिए तो गुरुदेव कृपा करके।
गुरुदेव कृपा।
इनका संसार कैसा था? पांचों पांडवों और कौरवों में युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में। कृष्ण ने अर्जुन ने कहा जी हम नहीं लड़ेंगे, भीख मांग करके खा लेंगे, किंतु इस युद्ध में सभी लोग मारे गए, इसलिए भीख मांग करके खाने अच्छा है। तो और कृष्ण ने कहा कौन किसको मारता है, शरीर मरा हुआ। आत्मा अजर अमर है, उसको बाण नहीं छू सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकता, जल भिजा नहीं सकता। फिर तुम्हारा अभिमान ये कैसा है जब मैं मरने वाला हूं और दूसरा हमको मार देगा? मूर्ख होकर के पंडितों की बात कर रहा है, तो बहुत मूर्ख। सुनो मेरी बात, भगवान ने उनको 20 स्वरूप दिखलाए, सभी तो मरे हुए उनके दांतों तक। अर्जुन थक थक करके कांपने लग गया, बोला जी प्रभु मैंने आपको सखा कहा है, हमारे रथ को चलाते हैं, हमारे रथ के घोड़ों को पानी पिलाते हैं और उनका भी पैर दबाते हैं, अब से आपको सखा नहीं कहूंगा, आप जगत के मूल कारण हैं, इसलिए हमारे दोषों को क्षमा कीजिए, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करिष्ये तौ वचन। ऐसा कर करके फिर अर्जुन समझ करके फिर युद्ध किया धर्म के लिए। धर्म युद्ध में भीष्म पितामह जी कौरवों के पहले सेनापति, और उन्होंने प्रतिज्ञा की लाखों लोगों को एक दिन में मारूंगा। 18 लाख या 18 अक्षौणी सेनाएं थी, 10 दिन में सबको मार करके सब समाप्त कर दिया। दुर्योधन को आश्वासन दिया, किंतु अर्जुन पर विशेष स्नेह था इन सबका, द्रोणाचार्य का, भीष्म पितामह का, कृपाचार्य का। जब युद्ध आरंभ हुआ अर्जुन ने बाण लिया और फूल जैसे ऐसा बाण मारा जो भीष्म पितामह के चरणों में फूल जैसा स्पर्श करके गिर गया। भीष्म पितामह ने कहा, जो युद्ध में तेरी जय हो, तुमने हमको पहले प्रणाम किया। फिर द्रोणाचार्य को भी ऐसे कहे, द्रोणाचार्य ओ तुम्हारा तुम्हारी जय हो। और फिर इस तरह से युद्ध आरंभ होने के बाद में जब भीष्म पितामह लड़ने लगे और प्रतिदिन लाखों लोगों को मारने लगे, तो द्रौपदी ने देखा हमारी सारी सेनाएं समाप्त हो जाएगी। अर्जुन ने भी देखा, भीम ने देखा, भीष्म पितामह किसी को छोड़ेंगे नहीं। किंतु दुर्योधन जाकर के उनसे बोला, जी पितामह जी, आप में इतना बल है और आज तक 10 दिन हो गए और कोई भी पांडवों में से कोई भी नहीं हुआ, और हमारे सब भाई लोग मारे गए, सब कुछ सेनाएं खत्म हो रही, ये क्या बात? मालूम होता आप पक्षपात करते हैं, भीतर से पांडवों के प्रति प्रेम है और ऊपर से हमारी तरफ से लड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, एक बात करो, रात में तुम अपनी पत्नी को भेज देना मेरे पास में, जब ले आना, और उस समय समाधि में मैं रहूंगा, और उस समय मैं उसको बर मांगेगी तो मैं उसको कह दूंगा, सौभाग्यवत चीर सौभाग्यवती हो, तुम्हारा पति कभी ना मरे, और बेश वो मरेगा नहीं, तुम मरेगा नहीं, और अंत में तुम ही राज पाएगा। बड़ा प्रसन्न हुआ और लौट गया दुर्योधन। दूसरे दिन अपने पत्नी से कहा, आज शाम रात में 12 बजे चलना है, मैं रथ लेकर के आऊंगा और हमारे रथ पर चलना, भीष्म पितामह के जा करके प्रणाम करना और वो तुमको ये भर दे, भगवान बड़े दयालु हैं, सर्वशक्तिमान है, भक्तों को छोड़ करके वो दूसरों को नहीं देते, जीवन तो देते हैं किंतु विशेष प्यार भक्तों पर। उस दिन रात में बड़ी जोर से आंधी आई और बहुत जोर से मूसलाधार वर्षा हुई, शाम से ही इतनी घनाघोर वर्षा मूसलाधार कि निकलना मुश्किल था। शाम के युद्ध के बाद ही से ही आरंभ हो गया। दुर्योधन ने कहा, आज बहुत दुर्दिन है, कल हम लोग जाएंगे, आज रहने। और उसी रात में कृष्ण ने कहा, जी प्यारी सखी द्रौपदी, तू हमारे साथ में हमारे रथ पर चला आना, 12 बजे रात में जाना है भीष्म पितामह के पास, घूंघट जरा नीचे रखना ना, तुमको देख न सके, और उनको प्रणाम करना तो तुमको वो वर दे देंगे, तो तुमको वो वर देंगे, चीर सौभाग्यती हो वो, तो बस हमारी विजय हो जाएगी, हमारी विजय हो जाएगी अर्जुन की। द्रौपदी ने कहा अच्छा। कृष्ण जी छत्री लेकर के और रथ में बैठाया और लेकर के चले गए उस खेमे में जहां पर कि भीष्म पितामह जी ध्यानस्थ थे, रात में भगवान का चिंतन कर रहे थे। द्रौपदी घूंघट निकाल करके और वहां पर पहुंची और उनको प्रणाम किया और खड़ी हो गई सामने। थोड़ी देर के बाद में आहट मिली और उनका जब ध्यान टूटा, ओ उसका नाम क्या था,
भानुमती,
तू आ गई, बहुत अच्छा, तुम चिर सौभाग्यवती हो और तुम्हारे पति को तनिक भी कोई हरा नहीं सकता और वो युद्ध में विजयी होगा। इतने में द्रौपदी जी ने घूंघट उठा लिया, उनके चरणों में सिर नवा दिया, मुस्कुराने लग गई। अरे तू तू कहां से आ गई, हमने समझा जी भानुमती आई, तू आ गई, तुमको कौन साथ लाया? मालूम होता है उसी का हाथ है, काले का, वो कहां खड़ा है, तो बाहर में खड़े हैं। फिर कृष्ण के पास में गए, उनके चरणों में गिर गए, प्रभु आप जिसको रखेंगे उसको कौन मार सकता है, और आप ही जिसको मारेंगे उसको कौन रक्षा कर सकता है? अपने भक्तों के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे कर करके। और उनको महाभारत के युद्ध में लड़ा करके इनको विजयी बनाया, केवल कृष्ण की इच्छा से ही ये लोग जीते, नहीं तो उनको जीतना असंभव था। किंतु अंत में क्या हुआ, युद्ध के बाद में जब राज्य मिल गया, जो धुरसिंह महाराज जी का राज्य तिलक हुआ गया और एक चक्रवर्ती राजा हो गए, दुर्योधन इत्यादि सभी मारे गए, उस समय में कृष्ण द्वारका में गए और कुछ दिनों के बाद में अपनी लीला समाप्त करके गोलोक बैकुंठ में चले गए। उस समय पांडवों को पता लगा कि कृष्ण तो जगत छोड़ करके चले गए, उनकी लीला समाप्त हो गई, अब राज्य काल से कोई जरूरत, ये सारा काम राज्य इत्यादि तो कृष्ण के लिए था, बस उन्होंने सब कुछ अपने प्रपोते अभिमन्यु और उनके पांच पुत्र तो पहले ही मारे गए थे, गर्भ में परीक्षित महाराज जी थे, इसके बाद उनका जन्म हुआ, कृष्ण ने उसकी रक्षा की, उसको राज तिलक लगाया और सब लोग हिमालय की तरफ में चले गए राज्य छोड़ करके, निर्मोही निष्ठुर बन करके। आगे युधिष्ठिर, पीछे भीम, पीछे अर्जुन, पीछे नकुल, पीछे सहदेव, पीछे द्रौपदी, निर्मम निष्ठुर बन गए। और भीम को देखा तो पहले तो सहदेव वो बर्फ में चलते 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 प्राण छोड़ करके गिर गया, शरीर रह गया, फिर सहदेव, इसके बाद में अर्जुन, इसके बाद में भीम ने शरीर छोड़ दिया। युधिष्ठिर रह गए, उनके साथ में कुत्ता चल रहा था। इतने में धर्मराज आए, इंद्र आए और देवता लोग, उनसे बोले विमान खड़ा है, आप चढ़ करके चलिए स्वर्ग लोक में। उन्होंने कहा जी पहले कुत्ते को चढ़ा लो, ये हमारे भाई लोग तो सब चले गए, पत्नी चली गई, ये कुत्ता अभी तक नहीं गया, साथ नहीं छोड़ा, इसलिए इसको ले लो। और कुत्ता कौन था, धर्म था, ऐसा रूप बनाया था। उन्होंने कहा ये संभव नहीं है, ये कैसे जाएगा, आपने इतना काम किया है, पुण्य किया है, इसलिए आप चलेंगे, किंतु ये कुत्ता ने क्या किया। उन्होंने कहा अच्छा जो कुछ हमने धर्म किया है इसका सारा फल उस कुत्ते को दे रहा हूं, इसलिए कुत्ता जाए, मैं उसका फल भोगूंगा। तो बड़ा चकित हो गए। उन्होंने कहा अच्छा कुत्ते को विमान में चढ़ा दो। कुत्ता विमान शरीर छोड़ करके दिव्य ज्योति धारण करके उसने बैठ गया। कहा आप चलिए, तो मैं कैसे जाऊँगा, मैंने तो अपना सब पुण्य तुण्य सब दान कर दिया है। नहीं, जो पुण्य आपने जो दान किया इतना, इसका भी तो फल है, वो स्वर्ग से भी अधिक है। वो भी विमान में बैठे, जब स्वर्ग में पहुंचे तो देखा जी नकुल, सहदेव, भर, अर्जुन और सभी लोग, द्रौपदी सब, भीम सब उनके लिए वहां पर प्रतीक्षा कर रहे थे। ये सभी तो छोड़ दिया कि भगवान बड़े दयालु हैं, कैसे कृपा करते हैं किस पर। इसलिए आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, वृद्ध है, जुआ है, बालक है, यहां तक कि राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, चाहे वैज्ञानिक है, चाहे डॉक्टर है, चाहे जो हो, मरते समय कुछ काम नहीं आएगा, राष्ट्रपति का पद धरा रह जाएगा, सारी सेनाएं मिलकर के क्या करेंगे, मृत्यु से रक्षा नहीं। इसलिए प्रभु ने अपनी सारी शक्ति नामों में भर दी है। एक बार भी जीवन में जिसने नाम किया, मृत्यु का भय तो जाएगा ही, और सद्गुरु अवलंबन करके संबंध के साथ में भजन यदि कोई करे, संबंध के साथ अनाशक्त होकर के जगत से कर्तव्य ज्ञान से रहे, उसको गोलोक वृंदावन में कृष्ण प्रेम मिलता है। यही जीवन की अंतिम परावधि फल है, इससे बढ़कर के कोई फल नहीं। इसलिए धन किसी की रक्षा नहीं था। रावण जैसा कोई धनी होगा, उसका सारा पराकोटा महल राजमहल जो कुछ था वो सब सोने का था, विमान था, रक्षा किया। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री क्या करेगा? अधिकांश हम डॉक्टरों को देखते हैं कि दूसरों का दुख लेकर के विचार करते करते तो पागल हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर उनको हो जाता है, बल्कि जल्दी से वो मरते हैं साधारण मनुष्यों की अपेक्षा। इसलिए इस जन्म में भाई भगवान का भजन साफ करो, जीवन नष्ट मत करो, जीवन निर्वाह के लिए करो कुछ, कि तुम मधु की चीटी मत बनो। मधु की चीटी किसको कहते हैं? मधु की चिट्ठी वो कहलाती है जो मधु पीने के लिए कहीं मधु रखा था वो गई और उसमें लटपट फटर हो करके उसे मिल गई ना मर करके, तो उसका बंदर आया आदमी आया उसी को खा गया। तो ये संसार में आसक्त मत हो, नहीं तो तुम्हारी भी तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं, परदादा कहाँ हैं, आज वो धनवंतरी कहाँ हैं, वो जो ब्रह्मा थे जो विश्व का सृजन करने वो लोग ब्रह्मा, ये ब्रह्मा नहीं है, ये तो राष्ट्रपति जैसा ये पद है, इस पर बैठे हैं दूसरे, इस कुछ दिनों के बाद में दूसरे ब्रह्मा जी आएंगे। जब ब्रह्मा जी की ही आयु इतनी है कम, तो हम लोगों की तो बात है कम मृत्यु हो जाएगी, ठीक नहीं। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, जो कुछ भी करो करो अनाशक्त रहो, संबंध ज्ञान। संबंध किसको कहते हैं, थोड़ा सा ये कह करके मैं वक्तव्य समाप्त करूं। जगन्नाथ जी है ना, आपकी पत्नी है, वो यदि बीमार पड़ गई या आपकी पत्नी बीमार पड़ गई, डॉक्टर ने कहा जी 4 लाख रुपया लेना होगा और तब मैं ऑपरेशन करके जो प्लास्टिक कर दूंगा या हार्ट सर्जरी करूंगा, तो आप 4 लाख रुपये कहीं से इकट्ठा करेंगे कि नहीं कर देंगे उसके लिए? यदि कहा जैसे नहीं और 8 लाख लगेगा तो अपना घर भी बेच करके उसके लिए करेंगे, घर भी बेच देंगे। ये संबंध है स्त्री और पत्नी और पति का, अपने बेटे के लिए कर देंगे क्योंकि बेटा का। इसलिए जो लोग जिसका गुरु हमारा कृष्ण से ऐसा ही संबंध करा देता है, हमारा जीवात्मा का कृष्ण से ऐसा एक संबंध है, अभी हम उसे भूल गए, वही संबंध फिर से जोड़ देता है। उस संबंध से जो भगवान का नाम करेगा भजन, भगवान की प्राप्ति। इसलिए सदगुरु पदाश्रय करके संबंध के साथ जगत से अनाशक्त होगा।
Thus ends the class on the 12th of December 2002 in the evening in Sydney. Hare Krishna in Hindi. Hare Krishna.